नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के अनुदान की पहली किश्त देने की अनुशंसा की। राज्य को मिलेंगे 692 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रांची का औचक निरीक्षण, कहा राज्य के हर शहर को सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल बनाना हमारा संकल्प। राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में 16 लाख से ज्यादा मामलों का निष्पादन, 9 अरब से ज्यादा राशि का हुआ सेटलमेंट। राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड के साथ बढ़ा कुहासा, विमान सेवाओं पर भी पड़ा असर। दिल्ली से रांची आ रहा विमान डायवर्ट, 2 विमान विलंब से पहुंचे रांची। और राज्य में आयोजित 5वीं यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन, दिल्ली के पायस जैन ने पुरुष एकल और रेलवे की सुतीर्था मुखर्जी ने पहले एकल का जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की पहली किश्त जारी करने की अनुशंसा कर दी है। झारखंड को अनुदान के रूप में 692 करोड़ रुपए मिलेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड को कुल 1385 करोड़ रुपए अनुदान मिलना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवागमन व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी उन्होंने देते हुए कहा कि राज्य के हर शहर में आवागमन, नागरिक सुविधाओं और जीवन की सुगमता को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर के बाद संताल परगना के कुछ हिस्सों में एनआरसी भी लागू किया जाएगा।
एसआईआर, CAA और अंतिम में NRC, ये लोकसभा और विधानसभा से पूर्व जामताड़ा को होना है, क्योंकि जामताड़ा, मधुपुर, पाकुड़, कई ऐसे विधानसभा हैं जहां एक एक विधानसभा में 40-40 से 50-50 हजार लोगों का वोट से लेकर के आधार कार्ड से लेकर के राशन कार्ड तक फर्जी बनाया गया, और इन तमाम चीजों के प्रमाण है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी। वे ऊर्जा संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगी। यह आयोजन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हो रहा है। हर वर्ष यह दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इस विशेष दिन पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित करके ऊर्जा खपत को कम करने के प्रयासों में लगे औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के कुल 680 आवेदन प्राप्त हुए थे और पुरस्कार संरचना में 7 व्यापक श्रेणी के अंतर्गत 28 उपक्षेत्र शामिल है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभा को संबोधित करेंगे। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य भर में कल आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 16,78,491 मामले निष्पादित किए गए। झालसा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में राज्य भर में प्री लिटिगेशन के 15,17,243 मामले निष्पादित हुए हैं। वहीं अदालतों में लंबित 1,61,248 मामले सुलझाए गए हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 9,18,85,23,930 रुपए की राशि का सेटलमेंट भी हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बालू लदे दो ट्रकों के साथ ही एक जेसीबी मशीन भी जब्त की है। इस संबंध में खनन विभाग के पदाधिकारी श्याम नंदन सिंह ने बताया कि एक गोदाम में अवैध रूप से बालू का भंडारण किए जाने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई।
सूचना मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे अंदर में कुछ लोग मिला, यहाँ ये कोई स्टॉक यार्ड नहीं है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। और दूसरा चीज है कि गाड़ी पीछे लगी हुई है, तब इसको जांच करेंगे क्योंकि अभी तक ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया कि मेरे पास चालान है। बिना चालान का ट्रांजिट परमिट का ये लेकर के कहीं नहीं जा सकता है।
गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र से 5 दिन के नवजात को उसके माता पिता द्वारा बेचे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बेचे गए नवजात को पलामू जिला मुख्यालय के रेडमा इलाके से बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के ऐतिहासिक डाक बंगले की रौनक फिर लौटेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के ऐतिहासिक डाक बंगले की रौनक एक बार फिर लौटेगी। यहां 2,49,00,000 रुपए की लागत से बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। यह वही डाक बंगला है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आजादी की लड़ाई के दौरान संताल परगना की यात्रा के क्रम में शरण ली थी। आजादी के बाद जब पंचवर्षीय योजना के तहत मयूराक्षी नदी पर मसानजो डैम के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बतौर राष्ट्रपति इसकी आधारशिला रखने यहां आए थे। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
शीतलहर और रात के तापमान में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए गिरिडीह में शासन प्रशासन जरूरतमंदों की मदद में जुट गया है। इसी क्रम में नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने शहर के हृदय स्थल बड़ा चौक पर कई जरूरतमंदों, गरीबों और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठंड से जरूरतमंदों को बचाना हमारी प्राथमिकता है।
गरीबों को सरकार की तरफ से संबंधित किया जाता है, गरीब क्वालिटी का डबल कोटेड कम्बल आज स्थानीय लोगों को दिया गया है और मैं समझता हूँ कि ये कम्बल इतना बढ़िया है कि लोग इसको रखेंगे और आने वाले ठंड के दिनों में निश्चित तमाम लोग हेमा सोरेन जी को धन्यवाद करेंगे क्योंकि पहली बार इतना कम्बल मिला है।
राज्य के विभिन्न इलाकों में अब ठंड के साथ ही कुहासे का असर भी दिखने लगा है। घने कुहासे का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। घने कोहरे के कारण कल दिल्ली से रांची आ रहे एक विमान को डायवर्ट कर भुवनेश्वर भेजना पड़ा। वहीं 2 विमान 2 घंटे विलंब से रांची पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुहासा और घना होगा। अगले 5 दिनों तक इसका असर कायम रहेगा। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित 5वीं यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन दिल्ली के पायस जैन ने पुरुष एकल और रेलवे की सुतीर्था मुखर्जी ने पहला एकल का खिताब जीतकर सीजन का शानदार अंत किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची शहर का निरीक्षण किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 2019 से पड़े हैं पैसे, अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा बंडी और शॉल। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बिल जमा नहीं करने पर 5,695 लोगों की एक दिन में कटी बिजली। प्रभात खबर के शब्द हैं, सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा पैटर्न में बदलाव, साइंस में 3 और सोशल साइंस में 4 सेक्शन में बटे होंगे सवाल। दैनिक जागरण लिखता है, ईडी जांच के घेरे में विनय चौबे के कार्यालय के सभी उत्पाद आयुक्त होगी पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के अनुदान की पहली किश्त देने की अनुशंसा की। राज्य को मिलेंगे 692 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया रांची का औचक निरीक्षण, कहा राज्य के हर शहर को सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल बनाना हमारा संकल्प। राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में 16,00,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन, 9 अरब से ज्यादा राशि का हुआ सेटलमेंट। राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड के साथ बढ़ा कुहासा, विमान सेवाओं पर भी पड़ा असर। दिल्ली से रांची आ रहा विमान डायवर्ट, 2 विमान विलंब से पहुंचे रांची। और रांची में आयोजित 5वीं यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन, दिल्ली के पायस जैन ने पुरुष एकल और रेलवे की सुतीर्था मुखर्जी ने पहले एकल का जीता खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।